اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما ابریو۔ ڈی کیو 2023 میں آج ہم شروع کریں گے پارا نمبر 23 سے 23، جس کا نام کیا ہے، وما ابریو، میں بیزار یعنی میں بے گناہ قرار نہیں دیتا یا دیتی۔ اور آج ہم اس میں بہت ہی خوبصورت صورتیں پڑھنے والے ہیں۔ ایک تو ہم سورت یوسف کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، پھر ہم اس میں پڑھیں گے سورت ابراہیم کو انشاءاللہ، جو بھی اللہ ہمارے نصیب میں کرتا جائے گا۔ لیکن عظمت صحابہ کے ناطے سے جو آج ہم اس میں ایک موضوع لیں گے، اور وہ بھی ہمیں سورت ابراہیم کی آیت 24 میں ملے گا، لیکن ہم اس کا تھوڑا سا تذکرہ ادھر کر لیتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ صحابہ کے تذکرے کے ساتھ جب کوئی پارہ شروع ہوتا ہے تو اچھا بہت لگتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ مومن ایک درخت کی طرح ہوتا ہے۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا نام باقی رہے، یا نام رہے نہ رہے لیکن وجلیز لسان صدق فی الآخرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا بڑی محبت سے مانگی تھی کہ اللہ میرے بعد والوں میں میرا ذکر خیر رکھنا، یاد ہوگا آپ کو۔ بس اب اس کو آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جس کو ہمارے کلچر میں ایک جملے سے سمجھ لیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ بہت سارے لوگ کام تو کر رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں، لیکن فروٹ فل نہیں۔ کسان کو ذہن میں لائیے کہ وہ سارا سال محنت بھی کرے لیکن اس کے بعد انسانیت کو نہ سبزہ ملے، نہ پھل ملے، نہ غلہ اور اناج ملے، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہے نا۔ آپ دیکھیے، ٹرسٹ بھی ہیں، لوگوں کی خدمت خلق بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تعلم بھی ہے، تراوی، ترجمے، دورہ تفسیر، تو اس کا دیکھیے خیر تو بہت ہے اور اس کے نتائج بھی نکل رہے ہیں۔ جو خیر کا کام آج آپ اور میں کسی ایک کو کرتا دیکھ رہے ہیں، نمبر ایک، اس کی رسپیکٹ کیجئے، نمبر دو، اس کے لیے دعا کیجئے، نمبر تین، اس پہ رش کیجئے، کیونکہ دو لوگوں پہ رش کے ان میں سے ایک وہ ہے جو خیر کو پھیلاتا ہے اور حکمت کے ساتھ پھیلاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نظر آ جاتا ہے کہ جو آپ کو اکاموڈیٹ کر دے، تو پانچ چھ جگہ کے لوگوں کو ایک جگہ مل جانا چاہیے۔ یہ میں آپ سب کو کہوں گی، دس لوگ جب ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دس کی ایفرٹ بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور دس کے اوپر کم از کم ہر ایک کے ساتھ آٹھ دس لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سب کو جوڑ کر ایک جگہ ملائیے، کانفرنسز کیجئے، آپس میں عید پارٹیز رکھیے، محفلیں سجائیے کہ دیکھیے آپ کا بھی کام یہ، ہمارا بھی یہ، آپ بھی اس لیے کر رہے ہیں، ویسے ہی کر رہے ہیں، اس طرح۔ لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی اس ترتیب کو سمجھا جائے جس کے مطابق صحابہ کرام کا ساتھ تھا، پیچھے نبی تھے، ذہن آپ کا تھا، جس طرح کے کہ برین چائلڈ نبی کا تھا، اور وہ بولتے تھے اللہ کی حکم سے، بما ینتے کو نیل ہوا ان و اللہ بخش یوخا، کہ آپ تو اللہ کی وحی کے ساتھ ہی بولتے تھے، اور نبی کا ہر فیصلہ حکمت کا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا لگ گئی تھی نبی کو کہ ربنا ببس فیہم رسولا منہم، اس میں خوبی کیا تھی، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حکمت کی ضرورت ہے اس وقت، بلیو می۔ حکمت کہاں سے دکھتی ہے، آئیے ذرا سا صحابہ پر نظر ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کو ریسورسز تھے، یعنی اس وقت جتنے ریسورسز صرف ہم دورہ قرآن میں یوز کر رہے ہیں نا، میں آپ کو پورے یقین سے کہنے لگی ہوں یہ بات، یعنی میری اس آواز کو ورلڈ وائڈ آپ تک پہنچانے کے لیے، یا آپ کو یہاں اس جگہ بیٹھ کر، یا پھر جہاں بھی کلاس رومز اس وقت مختلف جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں، جتنے ریسورسز، جتنا پیسہ، جتنی ہیومن انرجی لگ رہی ہے، میں کہہ سکتی ہوں بڑی سے بڑی جنگوں میں بھی اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی، اتنا بڑا تو ایک بھی کلاس روم نہیں تھا مکہ میں اور مدینہ میں، نہیں تھا، بلیف کیجئے۔ دار ارقم کیا تھا، آپ نے دیکھی ہے دار ارقم کی وہ پلیس، آج بھی اس کی بجی لگی ہوئی ہے، کبھی جائیں گے نا تو صفا مروہ کی طرف پیچھے سے آئیں گے نا، यानी जहाँ से उम्रा करके तो मर्द जो है ना वो बाल कटवाने के लिए जिधर से गुजरते हैं ना उधर एक जगह पे आपको साइन लगेगा एदारे अरका। उन्होंने आज भी वहाँ एक छोटी सी जगह छोड़ दी है कि जहाँ पे ये सब निशानियाँ मौजूद हैं, कोई सोर्सेस नहीं थे। मक्का को तो छोड़ ही दीजिए ना, उसकी तो मैं बात ही क्या कहूँ, वो तो सिर्फ पर्सिक्वेशन को सफ़र किया, फोई दिया को मेहनत, बस उधर तो जड़े बनी थी दरख्त की अंदर, साबम ईमान तवक्कल सबर शुक्र सब्रन अलाल यासिर, यासिर के घर वालों सबर करो इन्नी मोइदकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत का वादा देता हूँ। नबी कह रहे हैं बीबी सुमैया माँ है, यासिर बाप है और अम्मार बेटा, ये बेबी थे वो मियाँ बीबी उस वक्त जवान थे और अबू जहल के ये गुलाम थे, कहले फैमिली के तौर पर या खानदान गुलाम था उनका, और अबू जहल उनको तपती सहराओं की रेत में लिटा देता था, और अल्लाह के नबी वहाँ से गुजर कर यही कहा करते थे कि यासिर के घराने वालों सब्र करो, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे सकता हूँ। कर सकते थे तो पत्थर तो उठाकर अबू जहल के घर के दरवाजे पे एक मार ही आते ना, नहीं मारा। तो ये मक्की दौर को तो समझिए, एक दरख्त की तरह बढ़ना क्या होता है, पहले आप अपने दिलों में ईमान की जड़ें लाएं। ये सारी बातें आपने याद रखनी है, सूरत इब्राहिम की आयत 24 जब हम पढ़ेंगे उधर इतना टाइम नहीं होगा, जितनी मर्जी भी हम कोशिश कर लें। 13 साल में दरख्त की जड़ें बनी थी, सहाबा कराम में कूट कूट के अल्लाह की सच्चाई, अल्लाह का मुकाम, अल्लाह का वजूद के ला इलाहा इल्लल्लाह के लफ्ज़ इलाह को भी समझा और ला को भी समझा कि क्या खुदा नहीं है, लात मनात उज्जा यऊक यगूस नसर ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो साहब ठुक गए, आहद आहद कहने पे जो बिलाल को कोड़े पड़ते थे ना उससे बिलाल ठुक रहे थे। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, अगर हम चाहते हैं कि इस दीवार पे चलिए इधर हम एक घड़ी टांगे तो घड़ी के लिए हमें कील चाहिए होगा ना, आप कहते हैं अच्छा इधर एक कील ला दीजिए और हम इधर घड़ी लगाते हैं, आप पूरा दिन भी उस कील को लेकर ना इधर निशान लगा के ना उस पर रखते रहें, पुश करते रहें पुश करते रहें, वो कील नहीं ठुकेगा, आपको खुद कहना पड़ेगा एक हथौड़ी है आपके हथौड़ी दीजिए, वो लाएंगी और आप उस हथौड़ी के साथ कील लगाएंगे तो कील ठुकेगा। जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है वो ठुकती नहीं है। सहाबाए कराम को इतनी मुश्किलात से गुजार कर अल्लाह ने जिस दौर से गुजारा वो क्या था कि पहले मुश्किलों की भट्टी में पड़े, फिर उस पे कभी उमैया ने कोड़े मारे, कभी अबू जाहल से कुछ जुल्म व सितम हुआ। अच्छा वो कहते हैं ना कि मुश्किलों की ज़मीन पे ही खैर के पौधे उगते हैं, आप किसी भी डॉक्टर या ऐसे शख्स को जिसको मेडिकली कोई चीज़ों का एक्सपीरियंस उससे पूछे, गर्मियों में हमारा जिस्म बढ़ता है, हमारे बाल बढ़ते हैं, कद ज़्यादा बढ़ता है, सर्दियों में एक किस्म के हम हाइबरनेट हो चुके होते हैं अंदर से, और दुनिया में आज ऐसे कई हशरात और जानवर हैं कि जो सर्दियों में तो बिल्कुल सो जाते हैं, आपको भी पता होगा कई मछलियाँ जब खुश्की होती है ना तो वो हाइबरनेट हो जाती है, सो जाती हैं, स्नूज कर जाते हैं, ये हमारे फ़ोन में नहीं स्नूज लगा होता चू 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 करता रहता है। असल जो ग्रोथ हुई जो मैंने समझा, और मैं पिछले 22 साल को अगर सामने रखूँ तो मैंने ये चीज़ हर मुल्क हर हर स्टेशन में देखा, जहाँ जहाँ मुश्किलें ज़्यादा आईं, जहाँ आजमाइशें ज़्यादा आईं, जहाँ रिएक्शन ज़्यादा शो हुआ, चाहे गवर्नमेंट से पाबंदियाँ लगी इधर से लगी, माली परेशानियाँ थी, वहाँ ज़्यादा काम हुआ। मक्का में 13 साल में ये दरख्त की ग्रोथ में कह लीजिए कि दरख्त की जड़ें बनी, ईमान बिल्ला पुख्ता हुआ, और साथ ही साथ फिर ईमान बे रसूल कैसा हो गया कि नबी ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, चल पड़ो तो चल पड़े, हैंड्स अप हैंड्स अप हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन, सिट सिट टुप टुप। साहबा ने नबी के एक एक इशारे पे काम किया, ये तो हम पढ़ेंगे 26वें बारे में, लेकिन साहबा के साथ ये सब हुआ तो क्या पता चला। आप सूरत फत की आखिरी आयत में ये पढ़ेंगे कि अल्लाह ने साहबा कराम को कुरान में एक खेती से तशबीह दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मतलब है कि उनकी क्या बात है उनको क्या कहें, लेकिन जो वल्लज़ीना माहू हैं ना वो बड़े प्यारे हैं क्योंकि वो ऐसे खूबसूरत लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने इस दुनिया में कैसे भेजा था, जिसको एक खेती से तशबीह दी थी कि वह मसलों फिल इंजील का ज़र्री अखरज शत्तहू, कि इंजील में उसकी मिसाल है कि जैसे ज़मीन में कोई एक छोटा सा बीज डला और उसने ऐसे कोंपल दी, अंकु कहते हैं अंकुआ, फिर उसको मजबूत किया, फिर वो मोटा हो गया, फिर अपने तने पे खड़ा हो गया, और अच्छा लगता है किसानों को, अपनी खेती को फलता फूलता देकर कौन खुश नहीं होता, और मुनकरों को काफिरों का दिल भी बड़ा जला साहबा को देखकर। लेकिन अल्लाह ने इस मिसाल से आपको मुझे ये सिखा दिया कि बीज डालने से फल लेने तक, रूट टू फ्रूट, नंबर एक तरतीब, नंबर दो सब्र, नंबर तीन इंतज़ार, नंबर चार सही मौसम में बीज डालना है, फिर सही मिकदार में पानी देना है। आपको पता है कि चावल खाएं, जब ख़ास पे पुलाव खाएं तो क्या लगता है, प्यास लगती है। इस जुमले को लिखिएगा ज़रा, आज आपको एक और एनालॉजी समझ आएगी इस जुमले। आप देखिए कि प्यास लगती है चावल खाने के बाद, हालांकि ये चावल का बच्चा जब बीज की तरह लगाया जाता है ना, तो खेती में इतने ना पानी खड़ा किया जाता है। पाकिस्तान में एक जगह है वज़ीराबाद, वहाँ के चावल बहुत मशहूर है। पिछले ट्रिप में हमें वहाँ से इनविटेशन मिली और हम वहाँ गए, और रास्ते मंदिरों में चावल का फसल थी, पानी में पूरे पूरे पाँव डूबे हुए थे, बच्चे भी थे, लड़के मर्द भी थे, तो पानी के अंदर चावल डाल रहे थे नंबर एक। फिर जो हमारे होस्ट, उन्होंने हमें बताया कि अब ये बीज से लेकर इसके निकलने तक ये पानी खड़ा रहता है। अच्छा, चावल पकाने के लिए पहले उसको धोते हैं, पानी में डालते हैं ना, फिर वो फूलते हैं, फिर पकते हैं ना। वो चावल जिसके उगने के पहले दिन भी पानी चाहिए था और आपको पीने के बाद भी पानी चाहिए, सोचिए वो कितना प्यासा होगा। अल्लाह आप सबको चावल बना दे, हिदायत की प्यास लग जाए। ये पानी है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सहाबे कराम के अंदर वही इलाही को जज्ब करने की इतनी तड़प और इतनी तलब थी कि वो कभी सहर ही नहीं हुए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा इतना तो खा लिया, इतना तो पी लिया, अल्लाह के नबी अब कब तक, 13 साल से हम आपके साथ हैं, अब मक्का में से मदीना भी आ गए, देखो ना अब हमने हिजरत भी कर ली, बदर की जंग भी आपने हमसे लड़वा ली, ओहद में देखे कितनी ठोकरें खा ली। नेवर एंड नेवर, कभी भी नहीं ऐसा किया। बिल्कुल अपने आप को फारिग करते हुए बस जो जिस वक्त करना था वो करते गए। और याद रखिए, कभी आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ज़मीन में बीज डाले और रात हो जाए और वो सोए और दिन को जागे और वो बीज इस तरह उगे और भड़े कि वो उसके उतने मतलूबा मेयार पे आ चुका हो और उस पे फल भी लग चुका हो, पत्तियाँ बालियाँ और दाना भी हो और पक चुका और वो उसको काटने लगे, ये नहीं हो सकता। फितरत का असूल है, दरख्त की तरह जो चीज़ बढ़ेगी वो खैर की होगी। साहबे कराम का इर्तका, तरक्की, ग्रोथ कह लें इंग्लिश में, दरख्त की तरह हुई। आगाज़ बीज से हुआ, फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लगे, फिर तना मजबूत हुआ, फिर ऊपर उठे, और यहाँ तक कि फिर अपने कमाल को जब पहुँचे तो ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे बन गए। और ये इतनी शानदार तरक्की थी सहाबा की कि एक तरफ तो अहले ईमान उनको देखकर खुश हो रहे हैं और दुश्मन दांत पीस रहे हैं। पता क्या चला कि उनकी जड़ मजबूत थी, उनकी जड़ें बड़ी स्ट्रांग थी। इस्लाम को दरख्त की तरह तरक्की देने का अल्लाह का जो प्लान था, जो मंसूबा था, ये सहाबा कराम के ज़रिए अंजाम पाया। हम पीछे पढ़ चुके, आगे भी दो दफ़ा भी पढ़नी आयत, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलखुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन, ग़लबा इस्लाम का जो मुश्किल टारगेट देकर अल्लाह के नबी भेजे गए थे, ये कोई आसान काम नहीं था। एक बच्चे के हाथ से छुरी छुड़ाना इतना मुश्किल है, चॉकलेट पे चॉकलेट खाई जा रहा है और आप उसके हाथ से एक चॉकलेट छुड़ाएं, आपकी जान चली जाएगी, वो नहीं छोड़ेगा। तो क्या लोगों को उनके मनपसंद लाइफस्टाइल से निकालना, उनके रस्म और रिवाज से निकालना, उनके पंप एंड ग्लैमर से निकालना, उनकी इर्द गिर्द की चकाचौंध और रौनक और पार्टी और फन और मज़े और मस्तियों से निकालना, तो इसके अंदर जल्दबाजी की बजाय सब्र, फौरी रिएक्शन नहीं करना, ये भी लिख लीजिए। पौधा निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा, आप ज़मीन खोदना शुरू कर दें, हवा लग गई तो बीज नहीं उगेगा। पनीरी को देखा होगा कभी, आप नर्सरी से पनीरी लाएं तो बहुत कम उगती है, वो कहते हैं हवा लग गई, कोई कहता है इसकी मिट्टी झड़ गई, कोई कहता है ये सूख गई होगी। पकते चावलों का ढक्कन लोग कहते थे खोल दो तो हवा लग गई है जी, दम नहीं तोड़ो, हमारी नानियाँ दादियाँ कहती थी ना। कुछ कामों के लिए हकीकत में एक मखसूस वक्त का सब्र चाहिए। अब ओवन बंद कर दिया आपने, 280 पे टेम्परेचर लगा दिया है, 40 मिनट का टाइमर लगा दिया है। अब बार बार खोल करना, देखें कि केक बना है कि नहीं बना, फूलेगा ही नहीं वो, केक रस बन जाएंगे, वो केक नहीं बनेगा क्योंकि हवा लग गई। तो सहाबा कराम दरख्त की तरह कैसे बड़े थे कि उन्होंने हर उस मरहले पे सब्र किया जिस पे सब्र करना ज़रूरी था, और हर उस वक्त पे हरकत की जिस वक्त हरकत करनी ज़रूरी थी। हमारी नाकामियों में एक बहुत बड़ी वजह डिली डेली भी है। देखिए मैं आपको अपने ऊपर कयास करके, जितने भी दीन के नाम पे काम करते हैं ना, चाहे वो फ्रेंच में, वो नॉर्वेजियन में, उर्दू में, इंग्लिश में, डच में, या ऑस्ट्रेलियन, जिस लैंग्वेज में, और ऑफकोर्स पाकिस्तान उर्दू और इंग्लिश और अरबिक, मैं उन सबको अपने भाई और बहन समझती हूँ। सब अल्लाह की रहमत से एक ही काम के साथी हैं। मैं ना करूँ कोई कर ले, कोई ना करे मैं कर लूँ, क्योंकि गोल एक है, लियुस्खिरहुल्लदीन कुल्ली। आपने कराची शहर को साफ करना है तो आपको खुशी किसको देकर होगी, जो कचरा फैला रहा है या जो सफाई कर रहा है? दी सीधी सी बात है, आप इस उम्मत की इसलाह चाहते हैं, आप इस शहर को खूबसूरत देखना चाहते हैं, आप मुसलमानों को जन्नत में ले जाना चाह रहे हैं, तो वो आपने कचरा उठा दिया तो वो साफ हो गए या किसी और ने उठा दिया, आपको तो खुशी होगी। जिसको मकसद प्यार है ना, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश पेश करेगा। जैसे अभी हजरत यूसुफ को हम देखेंगे कि आप मुझसे खिदमत ले लीजिए ना, इन्नी हफीज़ुन अलीम, मुझे पता है कि आपके इस कहत के सालों को कैसे मैंने डील करना है। आप पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल, फिर आप अपनी सर्विसेज पेश करते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, हेल्प एम आई, कोई कहता है मेरी मदद कर दो, कैन आई हेल्प यू, यस मैं कर सकता हूँ तुम्हारी मदद। तो जब आप एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाएंगे ना, फिर तेरी मेरी ख़त्म हो जाता है। सहाबे कराम को अल्लाह ताला ने उनके टेस्ट पे छोड़ने की बजाय, मेरा ये दिल करता, मेरा ये आइडिया, मेरा ये ख्याल है, मैं तो ये करूँगी, ये तो मेरा आइडिया है, नथिंग, सबको पकड़ के खाद बनाकर उस बीज की ग्रोथ में डाल देते थे आके, कि जहाँ रोका वहाँ रुक गए, जहाँ चलाया चल पड़े। नबी सल्लम के जो साथी थे ना, वो ऐसे ही नहीं बन गए थे इतने खूबसूरत। हमारी जिंदगियों में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, हमें कोई लीडर नहीं मिला जो हमारा मेंटोर होता। लीडर के बगैर कोई काम करना पता क्या होता है, वो ऐसे ही होता है जैसे बगैर माली की कंस्टडी के सड़क के किनारे कोई दरख्त उग गया। अक्सर आपने गुजरते हुए देखा होगा झाड़ियाँ, कोई बेचारा पैदल भी चल रहा होगा ना, तो उसके कपड़ों के साथ उलझेगा। लिखिए, जो लोग सेल्फ रेस्ड होते हैं ना, वो झाड़ झंकार बनते हैं। उनको नहीं पता कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना, वो अपनी मर्जियाँ करते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, अब मैं ये करा लेती हूँ। फिर दूसरे लोग तो सीधे साधे होते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है। मिसाल देती हूँ कि एक जगह बिल्कुल ऐसे नए लोग हैं जिन बेचारों को कुछ पता ही नहीं अल्लाह रसूल का, आप वहाँ जाके पर्दे पे कोर्स करवा रहे हैं, आप ज़रा हमारी बच्चियों को पर्दे का कोर्स करा दें। अच्छा, वो मेरे मियाँ साहब सिगरेट पीते हैं, ज़रा किसी से कि उनका सिगरेट छुड़ा दे, ये झाड़ झंकार है। आप अपनी बच्ची को पर्दा कराने से पहले वो उसके दिल में ईमान की जड़ें क्यों नहीं भरते? अल्लाह रसूल, आखिरत, मरने के बाद ये होगा, आप क्यों नहीं सिखाते? बीबी फातिमा और आयशा और खदीजा के किस्से क्यों नहीं सुनाते? हिकमत के बगैर होता है। इसके बरक्स जो पौधा किसी बाग में एक माली की कस्टडी में लगता है ना, तो आप देखिए कितने खूबसूरत है, बाहर ही ऊपर जाते हुए लॉन देखिएगा, कटा हुआ, छटा हुआ, किसको बढ़ाना कैसा, क्योंकि माली को काटना आता है, तराश खराश। जो मुरब्बी होता है ना, जो उस्ताद होता है, जो मेंटोर होता है, या जो आप लीडर कह ले, और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सहाबा को ट्रिम किया था। एक मौके पे आप कहीं से गुजरे, रात का वक्त था, तो अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ रहे थे तहज्जुद में, बड़ी आहिस्ता आवाज़ से। कहा, अबू बकर इतनी आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? कहा, अल्लाह के नबी सोए हुए लोगों का ख्याल कर रहा हूँ, और दूसरी बात है कि जिसको मैं सुना रहा हूँ वो तो जाग रहा है। थोड़ा आगे गए तो उमर फारूक भी कुरान पढ़ रहे थे, तो वो खूब ऊंची बात से पढ़ रहे थे। उमर, आपको क्या हुआ? अल्लाह के नबी सोए हुओं को उठा रहा हूँ, जैसे माशाल्लाह आप सहरी के वक्त अपने प्यारों को उठाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? पराठे, दही नहीं, डांट है, और आखिर में धमकी, आप नहीं उठाऊंगी। हर माँ 15-20 मिनट ऊपर बताती है ना, कितना मुश्किल होता है सोयों को उठाना। तो उमर कह रहे, मैं सोयों को उठा रहा हूँ, उठो तुम भी कुरान पढ़ो। और दूसरी बात है कि शैतान को भगा रहा हूँ। अब देखिए एक ही बात थी ना, एक लीडर है, एक माँ कह ले, एक उस्ताद कह ले, एक ऊंची बोल रहा है, एक आहिस्ता, तो अल्लाह के नबी ने अबू बकर से क्या कहा, अबू बकर थोड़ा सा ऊंचा कर लें, और उमर से कहा थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर लें। दैट इज़ ट्रिमिंग, ये है दरख्त की तरह बढ़ना। आज हमारे यहाँ ये नहीं है, हम जड़ों के बगैर पहले पत्ते झाड़ना शुरू हो जाते हैं। नमाज कोर्स करा रहे हैं जी हम, सलाह कोर्स हो रहा है, क्या मिलेगा आपको इस सलाह कोर्स से? आप तो हर हफ्ते, मैंने सुना है कि फलान जगह जाकर सजदे करते हैं कब्रों को, इबादत कुछ नहीं करेगी अगर आपके अकीदे में ज़ोफ़ है। आप कहते हैं नहीं, लोगों को अखलाकियात सिखाओ, बिल्कुल बात, ये तो आपने ऊपर के सारे वो जो टहनी है ना वो पकड़ ली, ना तना दिया अगले को। नतीजा क्या निकला कि आज इस्लाम की मेहनतें बहुत हैं माशाल्लाह, और देखिए इनको नुकसान नहीं होगा। अगर मैं गलत तरीके से भी अच्छी नीयत से दीन की खिदमत कर रही हूँ ना, ये मैं बहुत बड़ा जुमला बोलने लगी हूँ अभी अपने ऊपर लेकर, किसी पे तो मुझे हक ही नहीं है, मैं अच्छी नीयत के साथ दीन की खिदमत करती हूँ, रोज़ आती हूँ आपको इधर पढ़ा रही हूँ, मैं कहती हूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ, मैं कुरान पढ़ाऊँगी, चले रमज़ान है इसके बाद भी करा दूँगी, कुछ भी चले जो आपको ज़रूरत है, अच्छी नीयत के साथ कर रही हूँ तो मुझे अजर मिलेगा। लेकिन आपको फ़ायदा कब मिलेगा? जब मेरा तरीका भी दुरुस्त होगा, किन में बैठी हूँ, क्या लेवल है आपका। डॉक्टर तो एकदम फ़ौरन दवा नहीं देता जब तक बाहर नर्स बैठ के सारे सवाल जवाब ना कर ले आपके बारे में। आज दीन के अंदर ये नहीं है, नेकी बराए नेकी, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ाना है, मैंने पढ़ाना है इसलिए कि मुझे सवाब हो, मैंने इसलिए पढ़ाना है कि मेरा कोई सदका जारिया बन जाए, बन रहा? देखिए सवाब होगा, मैं 10 दफ़ा ये जुमला बोलने को तैयार हूँ, कभी किसी पे बदनीयती ना करिएगा, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, अपने लिए खुद डिसाइड करें कि मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं। सहाबा किराम अपने ज़ौक पे नहीं चले थे, कवानीने फितरत पे चले थे। ये जुमला आपको मेरी बात को समझने में, बल्कि इसको हज़म कराने में वही काम करेगा जो आप इफ्तारी के बाद चूरन खाते हैं कि वो पकौड़ा इधर फंस गया है, इसको ज़रा नीचे लगाना, ज़रा 7 अप का घूंढ देना, ये 7 अप भी हो सकता है आपके लिए, बिलीव मी। साहबा को इतनी जल्दी तरक्की कैसे मिल गई? ना असबाब थे, ना कोई इतनी चीज़ें थी, आप जैसी तो इतनी नेम थे, उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के प्लान के अंदर फितरत के कवानीन पे अमल किया था। जल्दबाजी की बजाय सब्र को अपनाया। चले यहाँ आपको पहले मैं इस बात पे भी एक बात सुनाऊँ, बड़ी मज़े की है। एक पादरी थे तो उनके चर्च के बाहर दरख्त नहीं था, धूप आती थी अंदर, ये वाक्य पढ़ा मैंने जो हमारे इन डेप्थ स्टडीज़ के जो स्पेशल कोर्सेज हैं ना, जो क्लोज रूम में होते हैं, उसमें सुनाया था, आपको आज ही सुना देते हैं ऐसे। तो वो कहते हैं कि मेरे भी खिड़की के बाहर एक दरख्त होना चाहिए। अब वो पादरी बेचारे खुद भी बूढ़े हैं, चर्च भी पुराना है, दरख्त उगाने को मेरा दिल कर रहा है इस खिड़की के बाहर एक दरख्त हो ताकि उसका साया पड़े। इन्होंने क्या किया कि सोचा कि अगर आप, मैं यहाँ बीज डालूंगा तो दरख्त के उगने में बड़ा टाइम लगेगा, मैं तो फौत हो जाऊंगा। इन्होंने दूर से किसी दरख्त को चूज़ किया और बिलडोज़र और वॉट एवर जो चीज़ें ले के उस दरख्त को उखड़वाया और लाकर अपनी इस खिड़की के बाहर लगा दिया, और बड़े खुश, कहेंगे देखो लोग इतनी मेहनतें करते हैं इतने साल में जी, वो जैसे हमारी कहावत में कि बीज डाले दादा तो फल खाए पोता, देखो मैंने तो रातों रात दरख्त लगा लिया। बड़े खुश थे, मुतमईन हो गए। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, उस दरख्त के पत्ते झड़ने लगे, आहिस्ता आहिस्ता वो कुमलाने लगा, 1-2 महीने में वो दरख्त टुनवन हो गया, जिसलिए लगाया था वो तो है ही नहीं। अब क्या हुआ, इनको समझ आ गया, इनका एक दोस्त था, उसने इनको जब परेशान देखा तो कहने लगा कि व्हाट हैपेंड। अब वो जुमला आप लिख लें बस, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस टॉपिक, कि दरख्त की बढ़ना होता क्या गया। कहने लगा आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था, बट गॉड वॉज नॉट, अल्लाह जल्दी में नहीं था। अल्लाह ने ये जड़ से कहना चाहिए दरख्त बनने का मरहला दिया है ना, ये इसी में ही लगना, तो जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र। फिर फौरी मुहरकात के तहत कोई काम नहीं किया। हम रात को बैठते हैं, हमें कोई आइडिया आता है, आधी रात को हम बैठ के उसका फ्लायर बनाते हैं, फजर पे उसको रिलीज़ करते हैं, और 2 दिन के बाद हम उस कोर्स को शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं शुरू में तो लोग बड़े आए, फिर बाद में नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, समझ आ गया? साहब ऐसा नहीं करते थे। अगली बात, अपने ज़ौक पे चलने की बजाय फितरते कवानीन पे चले। अपना शौक है, मेरा तो दिल कर रहा है कि आम का दरख्त बस सर्दियों में ही लग जाए, लेकिन उसने गर्मियों में लगना है। फिर अगली बात याद रखिए कि बेपरवाह होकर काम किया कि नतीजा क्या निकलेगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि रिजल्ट क्या निकलेगा। आप तरीका का ठीक रखें, नतीजा ठीक होगा। आप बिरयानी बनाते हैं, आप एग्जैक्टली सही रेसिपी फॉलो करें, प्रोसेस सही रखें, बिरयानी खुद ही बननी होगी, बन जाएगी। बस अगर मैं किसी से कहती हूँ कि मैं मिर्चों के बगैर खाना खाती हूँ, लोग कहते हैं चख ले, मैं कहती हूँ नहीं, गलत है। आप मुझे बता दें मिर्चें डाली थी कि नहीं, नहीं डाली थी तो मुझे चखने की ज़रूरत ही नहीं। आपने अगर डाली थी ना तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर होगी, पक्की बात है होगी। चीनी डाली थी आपने चाय में, चख लेना भी, मैं क्यों चखूँ, आपने डाली है तो बता दें। आप पुलाव बना रहे हैं और आप प्याज फ्राई करने की बजाय पहले पानी का एक गिलास डालें, फिर प्याज डाल दें, फिर 2 चम्मच घी की भी डाल दें, तो क्या वो असर बनेगा, रंग निकलेगा? दैट इज़ द थिंग। चीज़ों को सही तरह करिए, नतायज सही निकलेंगे। अगर आप अपने अपने स्टेशन से परेशान हैं तो अपनी गलती ढूंढें, दूसरे की नहीं। अपने पास से उसका इसलाह का हल ढूंढें, दूसरे के पास नहीं है। याद रखिए, दरख्ते इस्लाम को उगाने के लिए ज़रूरत थी। किसकी? नंबर एक, वो अपने जज्बात को कुचलें और अपनी उमंगों को दफन कर दें। और साहबा ने ये सब कुछ किया। और ये जज्बात किसके होते हैं भला? साहबा के क्या जज्बात होंगे? नौजुबिल्ला, गुनाह के? नेकियों के थे, खैर का काम करना चाह रहे थे। मैं अक्सर सोचती हूँ हज़रत अली जैसा बहादुर शख्स खैबर के मौके पे जाके मार के किए और मरहब नाम के इतने बड़े पहलवान को लथाड़ दिया, कभी एक बार भी ख्याल नहीं आया होगा मक्का में कि अल्लाह के नबी मेरे जज्बात में जोश उभर है, ज़रा मुझे इजाज़त तो दीजिए मैं जाऊँ। कुफ हुए दिया कुम चुप उमर अभी सब्र। उमर ने कितना जज्बात को कुचला जिस वक्त हुदैबिया के मौके पे कहा कि वापस चलो। अल्लाह के नबी कैसे वापस चलें, आपने तो कहा था उमरा करेंगे और ये होगा और वो होगा। अच्छा उमर, अल्लाह के नबी ये सुने, आप हक पे, आप सच्चे नबी हैं, इस्लाम सच है, जब ये सब है तो फिर आप इतना दब क्यों रहे हैं, आप इतनी वन साइडेड शर्तें क्यों मान रहे हैं? कहा उमर सब्र सब्र सब्र। और जब वापस पलटे और इन्ना फतहना लका फतह मुबीना की सूरत नाजिल होती है, तो उमर कहते मुझे उस दिन समझ आया था कि नबी की ये सारी हिकमत अली पॉलिसी क्या थी। तो उमर ने उस वक्त अपने जज्बात कुचले। बाद में कहते कि मैंने अपने इस गुनाह को माफ़ कराने के लिए कितने गुलाम आज़ाद किए, रोज़े रखे, जब मैं उसी नफ़्स सल्लम के आगे बोल उठा था। तो ये जज्बात को कुचलना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को फॉलो किए बगैर मुमकिन ही नहीं है। अपनी उमंगों का दफन किया। अबू बकर की बड़ी उमंगें होंगी, उमर की अलग होंगी, अली की और होंगी, उस्मान की और होंगी। आपको अगर दरख्त वाला काम करना है ना, तो फिर आपको अपनी उमंगों को दफन करके वो काम करना है जिसमें बेनिफिट है। अच्छा, दरख्त की तरह उगे। साहिब करम ने ये सब कुछ किया। उन्होंने किसी तहफ़ुज़ के बगैर अपने आप को अल्लाह की स्कीम के हवाले कर दिया। कोई इंश्योरेंस फॉर्म नहीं फिल किया। अच्छा, अगर दरख्त को कीड़ा लग गया तो फिर हमें फसल के पैसे तो कोई दे देगा। अच्छा, अगर टिकट लेते हुए अगर मुझे कुछ मसला हो गया तो मेरी टिकट ज़ाया तो नहीं होगी। आज उम्मत मुस्लिमा इन खपाइयों में पड़ गई। तो नतीजा क्या निकला? मैं सारी बात को समअप करूँ वरना मैं इधर ही लगी रहूँगी। ज़मीन में अल्लाह के दीन का एक ऐसा अबदी बाग लग गया जिसको अब सारी दुनिया मिलकर भी मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकती। युरीदून लियुतफियू नूरुल्लाहि बिअफवाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह का बाग मिटाएं, इसको काट दें, लेकिन नहीं कटेगा, अल्लाह पूरा करेगा। और अल्लाह के इस मास्टर प्लान के मेमार, माली, खाद डालने वाले ये सहाबा कराम थे। बात समझ गए आप भी? दरख्त की तरह बढ़िए। काम करने के दो तरीके होते हैं, कोई भी काम। अब चूंकि हम तो दीन का काम कर रहे हैं ना, तो हम इसकी बातें मिसालें देते हैं। कोई भी काम कर लें आप, दो तरीके हैं। नंबर एक, दरख्त की तरह वो काम पड़े, और नंबर दो, वो काम बेल की तरह हो। बेल क्या है? ज़मीन पे फैलती है, रातों रात उगती है। हम देखते हैं इसको हर साल नॉर्वे में, पौधे हैं, फूलों की बेलें हैं, हर दिन डिफरेंट मंजर है। 8 दिन में यूं दीवार पूरी पत्तों से भर जाती है, लेकिन फिर जब खिजां आती है तो चंद दिन में गई। दरख्त उगने में यानी ज़मीन से लेके फल, रूट टू फ्रूट में कई दफ़ा पूरी एक नस्ल चली जाती है। लेकिन बेल बहुत जल्दी उगती है। लेकिन होगा क्या, सिर्फ एक डंठल काट दें बेल की, उस सिरे का जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक हफ्ता छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा, बेल पूरी सूख जाएगी। दीन का काम दो तरह से लोग करते हैं, एक कहते हैं खूब करो, जल्दी करो, ये करो, जैसे भाग दौड़ नहीं होती। और पता है वो क्या सोच रहे थे, हमारा सदका जारिया बन रहा है। ये वो सदका जारिया जो आपकी आंखों के सामने है माशाल्लाह, लेकिन आपके पास बहुत कम होगा। अल्लाह तो ज़ाया नहीं करता, लेकिन दूसरा तरीका जो बेल की बजाय दरख्त वाला ना, वो वा ममा यनफो नासु फयंकुस, वो दरख्त कट भी जाता है ना तो फर्नीचर की सूरत में यादगार बन के आपके घर में आ जाता है। तो बहरहाल ये सहाबा कराम इस अप्रोच पे काम करते थे, तब दीन फैला। मुझे आपको क्या करना है, अपने ऊपर आ जाते हैं। कुरान हम सुन रहे हैं, बड़ा मुख्तसर सा सफ़र है। क्या इस सारे को सुनने और पढ़ने के बाद प्यास लगी है चावलों वाली? रमज़ान के बाद क्या करना है? मेरे से अगर कोई पूछेगा कि आप ही बता दें मैं क्या करना चाहे, तो मैं आपको यही कहूँगी कि सहाबा की तरह आप रूट टू फ्रूट बने, फातिहा से नाज तक। अब आपको कोई शॉर्ट कोर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस अब एक दफ़ा कुरान के साथ जुड़ना है। जिसको कुरान सीखने का ऐसा खूबसूरत मौका मिले जिसमें शर्त एक है, देखिए 8 साल, 10 साल, 20 साल का कोर्स आप पूरा नहीं कर सकेंगे, पक्की बात है, इल्ला माशाल्लाह। आप बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हैं तो चले जाएंगे, बच्ची हैं तो जवान हो जाएंगी, जवान है तो आपकी शादी हो जाएगी। तरीक़ाकार वही, एक मुख्तसर, एक महदूद टाइम पे आपकी ज़रूरत के मुताबिक कोई चीज़ ऑफ़र हो। आप देखिए कि आपने अक्सर दीन के नाम पे सुना होगा कि कहते हैं कि 5 साल का कोर्स, आलमा का कोर्स, और एक और नाम दरस निज़ामी का कोर्स, बेहतरीन कोर्स है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है, वो 8 साल का है, 9 साल का, कहीं 10 साल का है, और वो आपको ऊपर से शुरू कराते हैं मुश्किल सब्जेक्ट्स के साथ, कर करा के चौथे पांचवें साल में तो कुरान के तर्जमे पे आ पाते हैं। हम इसको अगर ब्रेक डाउन करके अगर ये सोच लें कि सबसे पहले मुझे अपने लिए क्या चाहिए, मेरी बेसिक्स, मेरी जड़ें, अकीदा सही हो जाए, अल्लाह रसूल, आखरत, ये तीन पर्चे ठीक हो जाएं, उसके बाद इबादत, स्टैम्प, तना, उसके बाद मेरे मामला ठीक हो जाए। चलिए मैं एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक इस्लाम का छोटा सा दरख्त तो बन गई ना, इसके बाद मैं दूसरों को देना चाहूँगी, तो फिर मैं ज़रा से मोर और ट्रेनिंग सेशंस और कोर्सेज से गुजर जाऊँगी, तो फिर मैं इंसानियत को नफ़ा दूंगी। ये तरीक़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं, और ये जितना इफ़ेक्टिव है ना, यानी फुल टर्म कोर्स, आप सब आज एक नियत कर लें और वो क्या है कि मैंने एक दफ़ा फातिहा से लेकर नाज तक कुरान पढ़ना है और सीखना है, तर्जमा भी, तजवीद भी, तफसीर भी, और उसके साथ जो बेसिक चंद चीज़ें मेरी डे टू डे लाइफ की हैं, और कम से कम इतने को लाइफ स्पैन में करूं कि मैं कर लूं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, और जल्दी करें तो 1 साल। इस वक्त भी जोहराबाद का कोर्स ऑफर है, उसमें बाहर से इजाज़त नहीं होती, लेकिन मेरा गुमान है कि पिछले चंद साल जब से कोरोना आया तो उन्होंने विद इन पाकिस्तान इजाज़त दी हुई है, फिर भी डबल चेक कर लीजिएगा क्योंकि वक्त कम है। आपको अगर पता चले आपका ज़िंदगी का है ही 1 साल और अल्लाह मैं कुरान को पूरा समझे बगैर चली गई, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं है। तो सेकंड चीज़ ऑफ़र आपको जो होगी इंशाल्लाह, जो ऑनलाइन पे करते हैं वो आपको ऑनलाइन पे कोर्स होगा, घर से करना है तो वो कर लें। और तीसरी बात है, हर शहर में जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, इंस्टीट्यूट्स हैं छोटे बड़े, तो वहाँ ऑन साइट भी करते हैं। तो बहरहाल ये तो बात लंबी हो गई, लेकिन बात बहुत ज़रूरी थी। आज होता क्या, तरतीब नहीं है, जो जहाँ से जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, भाई कब तक, और दिन क्या करेंगे, कोई गोल है नहीं, जी सवाब हो रहा है, बाकी हो रहा है। तो कुरान को एक दफ़ा कम से कम पूरा पढ़ लेना, ये आपका मेरा हक बनता है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे बेहतरीन तरीके से ये काम ले ले।